समर्थ का ऐसा उखड़ा हुआ जवाब सुनकर त्रिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुमने किसी बात का सीधा सीधा जवाब देना भी सीखा है या फिर हमेशा ही उल्टा बोलते हो? समर्थ ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, मैं तो हमेशा ही उल्टा बोलता हूँ, और कुछ? त्रिशा का मन वैसे ही बिगड़ चुका था कि उसने सुबह सुबह अमर को नहीं देखा और अमर ने भी उसकी खूबसूरत साड़ी को नहीं देखा। इनफैक्ट इस साड़ी में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी ये नहीं देखा, तो अब वो समर्थ से बहस करके अपना मूड और नहीं बिगाड़ना चाहती थी। वहीं माही अभी अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी थी कि अचानक उसका फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। माही ने एक पल के लिए फ़ोन को इग्नोर किया और पिलो से अपना मुंह ढक कर सो गई, लेकिन वो फ़ोन लगातार बजते ही जा रहा था, जिससे खींचते हुए माही उठी और एक झटके से फ़ोन उठाकर कान से लगाते हुए बोली, ये क्या बदतमीज़ी है, सुबह सुबह सोने भी नहीं देते हो, कौन है, क्या काम है मुझे? सामने से दीक्षांत ने गुस्से में कहा, क्या ये सोने का टाइम है? दीक्षांत की आवाज़ सुनकर माही की शब्द गले में ही अटक गए और हड़बड़ाते हुए उसके हाथ से फ़ोन छूटकर बेड पर गिर गया। उसने दोबारा कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो दीक्षांत ने गुर्राती आवाज़ में कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ मिस माही, क्या ये सोने का वक्त है अभी, और सोना है तुम्हें? माही ने जल्दी से हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मुझे और नहीं सोना है, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था कि किसका फ़ोन है। दीक्षांत ने डेविल स्माइल के साथ कहा, तो तुम तैयार हो ना वो सारा नुकसान चुकाने के लिए जो तुम्हारी वजह से हुआ है रावत इंडस्ट्रीज ने? माही ने जल्दी से कहा, यस सर, मैं सारा पैसा चुका दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दीक्षांत ने धीरे से कहा, ठीक है फिर, अभी आओ रावत इंडस्ट्रीज, मैं भी तो देखूं कितनी डेस्परेट हो तुम खुद की खुददारी साबित करने के लिए। माही ने कहा, जी सर, मैं अभी आती हूँ। दीक्षांत ने सामने से कहा, और ध्यान रहे 15 मिनट से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए तुम्हें, वरना अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। माही ने धीरे से हाँ बोलते हुए फ़ोन कट किया और फिर उछलते हुए बेड से उठकर जल्दी से कबर्ड की तरफ बढ़ गई। वो इतनी स्पीड से काम कर रही थी कि उसे खुद नहीं पता वो इतनी पावरफुल भी है कि इतनी तेज़ उसके कदम चल सकते हैं, और वो भी सुबह नींद में उठते ही। अगले 5 मिनट में ही वो रेडी हो चुकी थी। उसने अपने बालों को जल्दी से खुला छोड़ा। उसने इस वक्त ब्लैक कुर्ती और उसके नीचे ब्लू जीन्स पहनी थी। उस कुर्ती का कट उसकी कमर से थोड़ा सा ऊपर था, जिससे उसकी कमर हल्की सी विजिबल हो रही थी। उसने दुपट्टा उठाया, अपना फ़ोन और बैग उठाया और फिर सैंडल पहनते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियों से इतनी तेज़ उतर रही थी तो कल्याण सिंह ने कहा, बेटा आपने बताया नहीं कि आप आज ही जा रही हो, और इतनी सुबह ब्रेकफास्ट किया आपने? माही ने जल्दी से ज़बरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर सजाते हुए कहा, दादाजी मैं जाकर वहीं किसी कैफ़े में खा लूँगी, अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे बॉस मुझ पर भड़क जाएंगे, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना है। कल्याण सिंह ने कहा, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ। माही ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते बोलते वो दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। उसके बाद वो लगभग भागते हुए वहाँ से बस स्टैंड के लिए निकल गई। उसे 5 मिनट लगे बस स्टैंड पहुँचने में, जिसके लिए उसे हमेशा 15 मिनट लगते थे। वो हाँफते हुए टैक्सी ड्राइवर से रावत इंडस्ट्रीज जाने का पूछ रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर भी उसे हैरानी से देख रहा था। फिर उसने कहा, जल्दी बैठिए मैडम, लगता है आज आप जल्दी नहीं पहुंची तो आपकी जान ही चली जाएगी। माही ने कहा, जी भैया कुछ ऐसा ही है। वहीं दूसरी तरफ अमर इस वक्त एक पुलिस स्टेशन की हेड वाली चेयर पर बैठा था। उसके सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब मैंने सुना आपने शादी वाले दिन ये भविष्यवाणी की थी कि मेरी शादी में जो लड़की मैंने सिलेक्ट की है वो नहीं आएगी, और ऐसा ही हुआ, तो मैं आज आपकी भविष्यवाणी सुनने आया हूँ कि आज आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। फिर उसने अपने हाथ पर खुजली करते हुए कहा, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत तेज खुजली हो रही है, जैसे मेरा हाथ तड़प रहा हो किसी के गले को कसकर पकड़ने के लिए। उसके सामने धारावी का सब इंस्पेक्टर हरिवंश यादव खड़ा था और डर से कांप रहा था। चैप्टर नंबर 9, अगर आप इसे भूल गए हैं एक बार जरूर पढ़ लेना, हरिवंश ने हकलाते हुए कहा। अब मुझे भी किसी ने वो एनवेलप दिया था, मेरी कोई गलती नहीं है इस मामले में, और आप ये पुलिस स्टेशन में हैं, आप पर भी कार्यवाही हो सकती है, अमर ने किसी शैतान की तरह हंसते हुए कहा। और वो कार्यवाही कौन करेगा, तू या कमिश्नर साहब, कौन करेंगे? तुझे पता है ना अमर रावत का मोटिव है पूरे एशिया की माफिया वर्ल्ड पर राज करना। इतना बोलकर अमर एक प्राउडली स्माइल के साथ बोल रहा था, जिस दिन माफिया वर्ल्ड मेरे कब्जे में आया पूरा मुंबई आतंकवाद से दूर हो जाएगा और अमर रावत का राज चलेगा जिसमें किसी के साथ बुरा नहीं होगा, छोड़कर तुम जैसों को। तुम्हारे साथ तो इतना बुरा होगा जितना शायद यमराज भी अपने मेन्यू में नहीं रखते हैं किसी पापी को सजा देने के लिए। अमर रावत का पनिशमेंट मेन्यू काफी अट्रैक्टिव है और क्रिएटिव भी, क्या तुम देखना चाहोगे? हरिवंश ने 3-4 बार नामे गर्दन हिलाकर कहा। नहीं मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, फिर उसने जल्दी से घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, मुझे जिसने जैसा कहा मैंने कर दिया, ये सब पॉलिटिक्स का मामला है, फिलहाल सरकार का गुंडा राज चल रहा है और हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हम बस वो कर सकते हैं जो हमसे करने को कहा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, अमर ने चेयर से उठकर हरिवंश के सामने आते हुए कहा। बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे पास एक रिवॉल्वर है और जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारे साथ बदतमीजी करने वालों के साथ तुम कार्यवाही कर सकते हो। इस पुलिस स्टेशन में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना अमर रावत से भिड़ने का। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें किस चीज का लालच है? क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा हुआ है? हरिवंश को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। उसने झट से अमर के दोनों पैरों को पकड़ते हुए कहा, ये सब शेखर करवा रहा है और उसने मुझे कहा था कि वो मेरा प्रमोशन कमिश्नर तक करवा सकता है, और मैं उसकी बातों में आ गया। अमर ने हरिवंश के बाल पढ़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तो कमिश्नर की पोस्ट मुबारक हो तुम्हें, और साथ में अमर रावत से दुश्मनी भी। इतना बोलकर अमर ने अपना हाथ जेब से निकाला। अमर ने एक अजीब सा उंगली में पहनने वाला खंजर अपनी चारों उंगलियों में पहन रखा था, जिसमें चार ब्लेड निकले हुए थे। उसने हरिवंश के बाल और कसकर पढ़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया और अगले ही पल अपना हाथ उसके गले पर चला दिया। खून के छींटे अमर की शर्ट पर गिर पड़े और हरिवंश की एक चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज गई। वहीं कुछ दूरी पर, जहां मुजरिमों से मिलने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए अलग से लकड़ी की स्टूल बनी हुई थी। उस पर एक 20 साल की लड़की बैठी थी। उसने जैसे ही अमर को ये करते देखा, एक पल के लिए उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके होठों पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि कुछ देर पहले जब अमर यहाँ आया था तो हरिवंश उसे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ अपने भाई को खाना देने आई थी, लेकिन वो एक मुजरिम की बहन है तो एक पुलिस वाला उसके साथ बदसलूकी कर सकता है। ये बोलकर हरिवंश उसे हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा था। अमर ने जाते हुए उस लड़की के सर पर हाथ फेरा और फिर धीरे से कहा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई भगवान नहीं है और हॉस्पिटल का खाना भी हजम हो सकता है उसे। उस लड़की ने जल्दी से अमर के पांव छूते हुए कहा, काश आप मेरे भाई होते। अमर के होठों पर एक स्माइल आ गई और वो हंसते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया।
अमर जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठा तो उसका फोन बज उठा। उसने फोन पर फ्लैश होते नाम को देखा, जहां लिखा था मेरा बच्चा। अमर ने मुस्कुराते हुए फोन पिकअप किया तो सामने से जानवी की नींद भरी आवाज आई, अमर आप कब वापस आओगे, मुझे घर में अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। अमर ने प्यार से कहा, अभी आ रहा हूँ बच्चा, टेंशन ना लो, अब तुम उठ गई हो तो फ्रेश हो जाओ, इतनी देर में मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। जानवी ने जल्दी से कहा, अब आप बिजी तो नहीं हैं, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? मैंने कहा, नहीं बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पहुंच रहा हूँ। अमर को पता था आज जानवी को पीरियड्स आए थे, जिस वजह से उसने जानवी से प्रॉमिस किया था वो उससे मिलने आएगा और पूरे दिन उसी के साथ रहेगा और फिर शाम को अपने ऑफिस का काम घर से ही कर लेगा। इसलिए जानवी उम्मीद लगाई सोफे पर बैठी थी और उसे वहीं वापस भी नींद आ गई। और अब जब उसकी आंख खुली तो अमर को अपने पास ना देखकर उसका मन उदास हो गया, इसलिए उसने अमर को कॉल कर लिया।